अल्हम्दुलिल्लाह, आपने देखा ये कितनी खूबसूरत आयत है और कितनी खूबसूरत तरीके से इसके अंदर हिदायत की मिसाल बयान की गई है कि मोमिन का दिल कैसा है और उसके अंदर अल्लाह ताला ने कितनी इस्तेदाद रखी हुई है और कैसे उसको सारे खारजी असरात से महफूज रखने के लिए भी शीशे के अंदर बंद किया हुआ कि जो है ना उसके ऊपर किसी और के असरात ना हो। लेकिन बाज दफा बाज लोग अपनी इस्तेदाद को जाया कर देते, मोमिन जाया नहीं करता। और यही साफ दिल लेकर अल्लाह ताला के हजूर पेश होना है, इसी तरह चमकता हुआ होना चाहिए जैसे अल्लाह ताला ने दिया था कल्बे सलीम। तो सीने में दिल इसलिए ताकि महफूज रहे ना, देखिए ताक के अंदर है ना ये मिसबाह, तो ये चिराग ताक के अंदर रखा हुआ है, वरना बाहर भी रखा जा सकता था, किसी जगह भी रखते थे। ताक में रखने का क्या मकसद है? ताकि महफूज रहे, हवाएं इसको बुझाए नहीं, वो अंदर जल रहा है। और उसको जलाने वाली चीजें क्या है? वो तेल है। उसकी रोशनी को और करने वाली मजीद चीज क्या है? उसका शीशा है। सुभान अल्लाह। और चिराग जलता कब है? दिन में तो नहीं जलता ना, अंधेरों में। तो जब अंधेरे हैं गफलतों के, शिर्क के, बिदात के, दुनिया परस्ती के, जिहालत के, तब ये और चमकता है और रोशनी देता है। जहां रहता है, अपने माशरे में, अपने खानदान में, अपने दोस्त अहबाब में चिराग का काम करता है कि सारे माहौल को रोशन कर देते, अपने आप भी रोशन है और बाहर को भी रोशन कर रहा है। ऐसे ही होता है ना, चिराग खुद भी रोशन है और अपने माहौल में भी सारी रोशनी भर देता है, लोगों की जिंदगियों से अंधेरों को दूर कर देता है। सुभान अल्लाह। तो आप क्या चाहते हैं, ये चिराग जलता रहे या बुझ जाए? जलता रहे ना, तो जलाने के लिए क्या चाहिए फिर? तेल। ये तेल अंदर की चीज नहीं है, अंदर तो अल्लाह ताला ने वो इस्तेदाद रखी थी ना, वो अंदर की चीज थी, तेल बाहर की चीज है ना। और तेल ये कुरान है, इससे मुसलसल ताल्लुक, इससे मुसलसल जुड़े रहना, यही है वो जो आपके माहौल को भी रोशन करेगा, जो इस चिराग को जलता रखेगा, वरना चिराग बुझ जाएगा। क्योंकि इस दुनिया के अंदर इतनी गफलतें हैं, इतनी ज्यादा फितने हैं और इतने ज्यादा लॉस्ट हो जाने के चांसेस हैं कि चिराग बुझ जाता है, इसकी इस्तेदाद खत्म हो जाएगी। लेकिन मुसलसल जब आप फ्यूल देते रहेंगे ना, तो फिर ये रहेगा, जलता रहेगा। और याद अल्लाह नूरी मैं शार, इसका मतलब है अल्लाह ताला ने हम में से हर एक को खुद चुना है, सिलेक्शन हुई है, किस किस को इस नूर की तरफ से हिदायत मिलनी है। अल्लाह अकबर, ये उसकी मर्जी है और वो जिसको चाहे ये दे, ये उसकी हिकमत पे मबनी है, जिसके अंदर तलब होगी। अल्लाह अकबर। ये मिसालें अल्लाह ताला बयान फरमाता है, अल्लाह ताला ने फरमाया ये मिसालें हैं, इस मिसाल से अल्लाह ताला बयान करता है लोगों को। ये मिसालें दे के इसका मतलब है लोगों को समझाने के लिए कि लोग अच्छी तरह समझ लें। कितनी प्यारी मिसाल है ऐसे दिल की। और कुछ दिल ऐसे भी होते हैं जो रोशन ही नहीं है, जिनके चराग बुझे हुए हैं, जिनके अंदर इस्तेदात ही नहीं है। तो या दिल का आईना जो शीशा है वो इतना काला है कि वो जल ही नहीं सकता वहां पे चिराग, उसका कोई फायदा ही नहीं। तो अल्लाह ताला ने ये मिसालें बयान की हैं लोगों को समझाने के लिए। इसका मतलब एक दाई भी मिसाल दे के लोगों को समझा सकता है, एक टीचर भी मिसाल दे के समझा सकता है। और मिसालों को इसलिए दिया जाता है ताकि लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ जाए। बात तो कहानियां नहीं बयान करनी, और मिसालें दे सकते हैं आप। और आप इस आयत की प्लेसमेंट देखें कितनी खूबसूरत, सूरह नूर में मिडल में है ये। सुभान अल्लाह। इससे पहले भी अहकामात हैं घरेलू जिंदगी के हैं, आपको ये भी बताया गया किस तरह से आपने सोशल लाइफ में रहना कैसे है, मर्दों ने औरतों ने अपनी इफ्फत की हिफाजत कैसे करनी है, कैसा माशरा पाक साफ रह सकता है, और बाद में भी इसके अहकामात हैं, और इन द मिडल ये बात है नूरे हिदायत की बात। इसका मतलब जिसके अंदर नूरे हिदायत होगा ना, जिसका ये चिराग जल रहा होगा ना, वो ही हिदायत पा सकता है, वो ही इन अहकामात को कुछ अहमियत देगा, जिसके अंदर ये ना तलब है ना इस्तात है ना उसके अंदर कोई कोई जुस्तजू है, कोई तलाश नहीं, उसका दिया बुझा पड़ा है, उसका चिराग बुझा हुआ है, उसको क्या मिलेगा। तो जिनके चिराग जल रहे होंगे ना, वो ही इन अहकामात से भी फायदा उठाएंगे, जिनके अंदर नूर होगा। तो आपको मैंने नूरों नला नूर की मिसाल दी है, वो तभी है जब अंदर भी शफाफ है, और बाहर का तो नूर है ही है, वो तो कुरान है ही, वो ही नूरों नला नूर बन जाते हैं। वाकई कई लोगों को देखते हैं सुभान अल्लाह, पहले ही इतने अच्छे होते हैं, और उसके बाद फिर जब उनको ये नूर मिलता है तो फिर तो ऐसे चमकने लगते हैं कि आप, आजकल आपने हिलेरियन हैगी की बात सुनी होगी, काफी शोर मचा हुआ उनका कि वो कितने बड़े पादरी थे क्रिश्चियंस के, और बल्कि मतलब बाकायदा वो चर्च के अंदर इतना काम करना, और मतलब पादरी तो जाहिर है उनके बड़े बहुत बड़ा समझा जाता था उनको, और प्रीस के अंदर बड़ा मकाम था उनका, और वो फिर मुसलमान हुए हैं। आप कुरान पढ़ के, कुरान में ये सोचा कि मैं इसके अंदर से कुछ निकालूं, कि इसके अंदर से ऐसी बात निकालूं कि मुसलमानों के साथ डिबेट करूं, लेकिन अंदर था ना वो नूर जल रहा, तो जब कुरान का नूर मिला, ओ वो शोला निकला कि नूरों नाला नूर हो गया, मुसलमान हो गए। अब उनका पैगाम है, क्योंकि वो यूएस के ही हैं, तो अब उनका पैगाम है पूरे अमेरिका को कि सब मुसलमान हो जाए, यही हक है। आप इनके बारे में अगर सर्च करेंगे आफ्टर क्लास हिलेरियन हैगी, तो आपको पता चलेगा कि मतलब कहाँ से इनका सफर शुरू, और आपको यही आयत मुझे तो याद आ गई कि वाकई नूर उन अला नूर। और आप देखें बाज लोगों को आप कितना बताते रहे, कितना कहते रहे, बात ही नहीं सुनते, इसलिए कि अंदर का जो नूरे हिदायत है ना, वो ही नहीं है, वो ही करप्ट हो चुका है, वो बुझ चुका है, या वो मसख हो चुका है अपनी गुनाहों की वजह से, या अपने ही माहौल की वजह से, या अपनी और चीजों की वजह से जिन्होंने इफेक्ट किया। अब आप उसको दिखा रहे हैं, तेल भी दिखा रहे हैं, तो जले कैसे, वो जलने की ताकत ही नहीं, इस्तात ही नहीं। ठीक है, नूरों नाला नूर बनना है। और हम में से बाज लोग कुरान पढ़ पढ़ के भी क्यों ऐसे ही रह जाते हैं, वो नूर का कसूर नहीं, मगर हमारे दिल का शीशा धुंधला है। ठीक है, उम्मीद है कि ये आयत समझ आ गई होगी। वल्लाहु बिकुल्ली शय्इन अलीम, अल्लाह ताला तो हर चीज को जानने वाला है, उसको पता है कि किसको ये हिदायत देनी है और किसको कौन इस काबिल ही नहीं है, किसके दिल में इस्तात है और किसके नहीं है, कौन इससे फायदा उठाएगा और कौन नहीं, और उसने ये मिसाल बयान की है। तो अल्लाह ताला हमारे दिलों को भी अल्लाह ऐसा बना दे कि नूरुन अला नूर हम हो जाए, अल्लाह ऐसा हमें बना दे कि हमारा भी चिराग जल पड़े, जिससे इर्द गिर्द के भी अंधेरे दूर हो जाए, और हमारी जिंदगियां भी अपनी भी रोशन हो जाए, और हमारे इर्द गिर्द वालों की भी रोशन हो जाए। बहुत प्यारी मिसाल है, ऑलवेज अ फेवरेट आयत। अब देखें ये ऐसे लोग मिलते कहाँ पे हैं, जिनके चिराग ऐसे जल रहे हैं सुभान अल्लाह, ये कहाँ पे मिलेंगे आपको, ये मिलते हैं फी बुयूत अदिन अल्लाह अन तुरफा व युज़कर फी हस्मुहु, ये मिलते हैं घरों में। कौन से घरों में, जमहूर मुफस्सिरीन, जमहूर का मतलब क्या होता है, जैसे जमहूरियत हम कहते हैं ना, जमहूर का मतलब मेजोरिटी, मेजोरिटी मुफस्सिरीन का ये ख्याल है कि यहाँ पे घरों से मुराद मस्जिदें हैं, अल्लाह के घर, और बाकियों ने कुछ ने ये भी कहा कि मोमिनों के घर भी मुराद हो सकते हैं जहां पे अल्लाह का जिक्र किया जाता है। तो अदीन अल्लाह, कौन से बुयूत, मस्जिदें, मस्जिदों में ये मिलते हैं जहां पे अल्लाह ने हुक्म दिया अन तोरफा कि उनको बुलंद किया जाए, जहां उनको बुलंद किया जाए। बुलंद का मतलब कर क्या होता है, एक तो फिजिकली बुलंद करना होता है, यानी मस्जिदें बनाई जाएं, मस्जिदों के बाद लोगों ने इससे ये मीनिंग लिया कि उनके मीनारे बनाए जाएं, उनके ऐसे बनाए जाएं ऊंचे ऊंचे मीनार के दूसरी घरों से बुलंद हों वो, या बुलंद जगहों पे बनाई जाएं, तो ये भी मुराद हो सकता है। ये भी मुराद लिया गया है कि मस्जिदों को आलूदगियों से पाक रखा जाए, गंदगियों से पाक रखा जाए, गंदी चीजों से, बेहुदा गुफ्तगू से, तिजारत से, कारोबार करने से, इन सब चीजों से मस्जिदों को पाक साफ रखा जाए। देखिए, गंदी बातें करने की जगह मस्जिद नहीं है, मस्जिद की आगे बात आ रही है कि एक हुरमत होती है, ना गंदी बातें की जाए, ना उनको फिजिकली गंदा रखा जाए। मस्जिदों में जाके चीजें फेंक देना, या मस्जिदों में जाके अपनी पुरानी किताबें जो घर में जरूरत नहीं है, अब कैसे इनको डिस्कार्ड करें, तो अब हमें तो आता नहीं, काटूंगी कैसे करूंगी, तो इस झंझट में पड़ने से बेहतर जाओ मस्जिद में फेंका, वहां पे खुद ही वो करेंगे कुछ इसको। कुराने पाक जो शहीद हो रहे हैं उनको जाके मस्जिद में रखाते हैं, मस्जिद में खुद ही कोई टेक केयर कर लेगा, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। इसी तरह मस्जिद की सफाई सुथराई, नमाजियों की सहूलत का इंतजाम, देखिए अल्लाह ताला ने तो अपने नबी इब्राहिम और इस्माइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया था कि मस्जिद को पाक रखो, मेरे घर को पाक साफ रखो लोगों के लिए जो नमाजों के लिए आए, तवाफ के लिए आए। तो मस्जिद में बिजली का इंतजाम करना, मस्जिद में सहूलतें ऐसी देना कि नमाजी आराम के साथ अपनी इबादत कर सके। ठीक है, फिर एक और भी जगह तरह इसका माना बनता है, मानवी माना बनता है रफा करने का, यानी ऊंचा करने का, कि मस्जिदों की ताजीम की जाए, इनका एहतराम किया जाए, इनका मर्तबा बुलंद किया जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह ताला से मोहब्बत रखना चाहता है उसको चाहिए कि मुझसे मोहब्बत करे, और जो मुझसे मोहब्बत रखना चाहता है उसको चाहिए कि मेरे सहाबा से मोहब्बत करे, और जो मेरे सहाबा से मोहब्बत रखना चाहता है उसको चाहिए कि कुरान से मोहब्बत करे। सुन लिया आप लोगों ने, कुरान से मोहब्बत करे, और जो कुरान से मोहब्बत रखना चाहता है उसको चाहिए कि मस्जिदों से मोहब्बत करे, क्योंकि वो अल्लाह के घर हैं, अल्लाह ने उनकी ताजीम का हुक्म दिया है। देखिए, इसकी इज्जत करना, क्या ये शायर अल्लाह है ना, आपको याद है हमने शायर अल्लाह का पढ़ा था, जिन चीजों को देख के अल्लाह की याद आ जाए, तो शायर अल्लाह में से मसाजिद भी हैं। आप उनको, उनकी ताजीम आप क्यों करते हैं, इसलिए नहीं कि वो बड़ी खूबसूरत है, या इसलिए कि बड़ी घूमने की जगह है, या इसलिए कि बड़ा इसके ऊपर नक्शो निगार बना, इसकी ताजीम इसलिए कि ये अल्लाह का घर है, अल्लाह की याद का घर है। तो जो चीज भी अल्लाह से जुड़ जाए उसकी ताजीम करनी चाहिए, चाहे वो मस्जिद है, चाहे कोई मदरसा है, चाहे कोई घर है जहां पे दर्स होता है, चाहे कोई इंसान है जो अल्लाह ताला के साथ जुड़ा हुआ है और उसकी तालीम देता है। ताजीम, इंसान की ताजीम जरूरी, उनकी अपनी वजह से नहीं, अल्लाह के नाम के जुड़ने की वजह से उनके साथ। और फरमाया, और इनमें बरकत रखी है, वो भी बाबरकत है, और इनके रहने वाले भी बाबरकत है। समझ आई बात, कि यानी ये मस्जिदें भी बाबरकत जगह हैं, और जो इन मस्जिदों को आबाद करने वाले वो भी बाबरकत है, वो भी अल्लाह की हिफाजत में है, और इनके रहने वाले भी हिफाजत में है, और वो लोग अपनी नमाजों में मशगूल होते हैं, अल्लाह ताला उनके काम बनाता है और उनकी हाजतें पूरी करता है, और वो मस्जिदों में होते हैं और अल्लाह ताला उनके पीछे उनकी चीजों की हिफाजत फरमाता है। इमाम कुर्तुबी ने ये रिवायत की है, यानी जब वो अल्लाह ताला के लिए उसकी मस्जिदों के अंदर जाते हैं, उसके तकबीर बुलंद करते हैं, तस्बीह करते हैं, नमाज पढ़ते हैं उसके घरों में यानी मसाजिद में, तो अल्लाह ताला उनके काम बनाता है, अल्लाह उनकी जरूरतें पूरी करता है, अल्लाह ताला जब वो मस्जिद में होते हैं तो उनके पीछे उनकी चीजों की हिफाजत करता है। सुभान अल्लाह, तो मस्जिद अल्लाह का घर बना बताया गया, और उसकी ताजीम हमारे लिए जरूरी है कि हम इसको हर तरह से इसकी इज्जत करें, मस्जिद की समझे कि ये मस्जिद है। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना देखे, मस्जिद में लहसुन वगैरह खा के आने, प्याज लहसुन खा के आने से क्यों मना किया, कि यहाँ पे दूसरों को अजियत ना हो, कि आपकी स्मेल से फरिश्तों को भी अजियत होती है, दूसरे इंसानों को भी होती है, बदबू आती है, तो इंसान अगर गंदे कपड़े पहन के मस्जिद चला जाए, या मस्जिद को में चीजें बिखेर दे, जूतियां कहीं फेंकी हुई है, पानी है तो वुजू किया तो पानी हर तरफ पानी के मतलब छिड़का दिया और पूरी जगह गीली करके रख दी है, इसी तरह गए हैं, अंदर गए हैं तो कहीं कोई च्युइंगम का रैपर फेंका हुआ है, कहीं कोई खा पी के चीजें फेंकी हुई है। नहीं, मस्जिद इज्जत की जगह है, गंदगी फैलाने की जगह नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने मस्जिद में से नापाकी और गंदगी और तकलीफ दे चीजों को हटा दिया, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में घर बना देगा। वैसे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मस्जिद को तामीर करता है, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में घर बना देता है। यानी पहली मैंने आपको क्या बात बताई कि हिस्सी तौर पे मस्जिद को बनाना, मस्जिद बनाना भी बहुत बड़ा सवाब का काम है, उससे आप जन्नत में अपना घर बना सकते हैं। और मस्जिद को पाक साफ रखना भी, सिर्फ बना के छोड़ देने की बात नहीं है। तो जब आप मस्जिद में जाएं तो ऐसी हर चीज से परहेज करें जिससे मस्जिद की ताजीम में खलल आए, जिससे मस्जिद की अदब बेअदबी हो, जिसको कहते हैं बेअदबी हो जाए। किसी को इसलिए पसीने वाले कपड़े पहन के या सिगरेटें पी के या इस तरह की चीज करके मस्जिद में नहीं आना चाहिए। इसी तरह कोई अगर बीमार है तो तब भी मस्जिद में ना आए। अब देखिए रमजान आ रहा है, आप देखिए रमजान में लोग क्या करते हैं, बीमार इतने हैं फिर भी मस्जिद में पहुंच जाते हैं। भाई आप घर में पढ़ लो, इससे क्या होगा, बीमार जब मस्जिद में पहुंचेगा इससे दूसरों को तकलीफ पहुंचेगी। इतना खांस रहे हैं, उसी कारपेट में खांसते जा रहे हैं, सजदे कर रहे हैं उसके, तो भाई आप घर में पढ़े। तो इसलिए चाहिए कि अपनी वजह से दूसरों को तकलीफ ना दे, अदब करें मस्जिद का, ये भी अदब है। फिर मस्जिद को में ऐसा शोर गुल करना कि बातें हो रही हैं, गप्पे मारी जा रही हैं, बैठे हुए हैं, अब कोई लोग कुरान पढ़ रहा है, कोई तस्बीह कर रहा है, शोर एक मचा हुआ है, लोग बच्चों को लेकर आते हैं, जरूर लेकर आए बच्चों को मस्जिद, जरूर लेकर आए, लेकिन बच्चों को साथ सिखाएं तो सही कि मस्जिद का अदब क्या है। मस्जिद लघव काम करने के लिए तो नहीं है ना, ना लव कलाम करने के लिए। बुलंद करने का हुक्म ये भी जो दिया गया ना, तो इब्ने अब्बास ने इससे यही माना लिया कि अल्लाह ताला ने मस्जिदों में लव काम करना और लव कलाम करना दोनों मना किया है, लघवियात से बचे। यानी आप अगर बच्चों को प्ले ग्राउंड के तौर पे मस्जिद को इस्तेमाल करने देते हैं कि बच्चे भाग रहे हैं, खेल रहे हैं वहां पे, जो जगह वहां पे नमाज पढ़ने की, बाहर जाके जरूर खेल खेलें जरूर बाहर जाके, लेकिन जब उनको पता होना चाहिए कि जब वो मस्जिद के अंदर हो तो इन्होंने दौड़े नहीं लगाने, इन्होंने शोर शराबा नहीं करना, ना कोई आप तस्बीह कर सकते हैं, ना कोई आप नमाज नफल पढ़ सकते हैं, कुछ भी, क्योंकि शोर हंगामा ही इतना। एक कॉन्फ्रेंस रूम बनाया हुआ है या एक प्ले ग्राउंड बनाया हुआ है, तो क्या जो अदब की जगह है। आप मसलन है कि किसी प्रेसिडेंट के उसमें जाएं, किसी वजीर के घर जाएं, किसी अमीर के घर जाएं, तो उसके घर जाके भी बच्चों को पहले से समझा के लेके, वहां पे जाके बदतमीजी ना करना, ऐसे ना करना, लेकिन मस्जिद का कोई ख्याल नहीं कि वहां के लिए भी हम समझाएं बच्चों को। इसी तरह बाज लोग अभी नमाज खत्म होती नहीं है वो स्पीकर पकड़ के उसके ऊपर शुरू हो जाते हैं, कुछ ऐलान कर रहे हैं, कुछ ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि किसी ने सुन्नतें पढ़नी है, किसी ने नफल पढ़ने हैं, कोई अभी अपनी तस्बीहात कर रहा है, सब भूल जाता है। तो मस्जिद का एहतराम है, याद रखिए वो अल्लाह का घर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपने घर से वुजू करके नमाज के लिए मस्जिद की तरफ जाता है, फर्ज नमाज के लिए, उसका सवाब उस शख्स जैसा है जो एहराम बांध के घर से हज के लिए निकला, इतना बड़ा सवाब है। जो शख्स नमाजी इशराक के लिए अपने घर से वुजू करके मस्जिद की तरफ चला जाता है तो उसका सवाब उमरे करने वाले जैसा है, यानी नफली नमाज का सवाब कि अगर आप नफली नमाज मस्जिद जाकर पढ़ रहे हैं तो उमरे जैसा सवाब, फर्ज नमाज के लिए जा रहे हैं तो हज जैसा सवाब। कितनी बड़ी बात है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया, जो लोग अंधेरे में मस्जिद को जाते हैं, कयामत के दिन अल्लाह ताला उनको मुकम्मल नूर की बशारत सुना देता है कि उनको उनके लिए मुकम्मल नूर होगा। जिस दिन अंधेरे होंगे ना और इंसान चाहेगा कि मुझे नूर मिले, तो उनको नूर मिले जगह जो अंधेरों में मस्जिद में जाए। अंधेरों में कौन सी नमाजें होती, ईशा की और फजर की खास तौर पे, तो उन दो नमाजों के लिए जो निकलता है, और ये मुनाफिक पे बड़ी भारी होती है ये दो नमाजें। तो ये अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि मस्जिदों को बुलंद करो, वायुज का रफी हसमू, और इसमें अल्लाह का ही नाम लिया जाए, यानी अल्लाह ताला के नाम की तस्बीह की जाए, नमाजें पढ़ी जाएं, मस्जिदों की ये भी देखें बेअदबी है कि वहां पे शेरो शायरी शुरू हो जाए, मुशायरे शुरू हो गए मस्जिदों के अंदर, मस्जिदों के अंदर और ऐसी एक्टिविटी शुरू कर दी जाए कि बच्चों को कुछ कार्टून दिखा रहे हैं, बच्चों को ऐसी गेम्स खिला रहे हैं। ये इसलिए नहीं है, ये अल्लाह का नाम बुलंद करने के लिए, ये सब भी गुलाबू फी हा बिल उदू भी वाला सा तस्बीह करते हैं इसके लिए। इनमें सुबह को और शाम को कौन तस्बीह करते हैं? यही वाले लोग जिनके दिल में ये चिराग जल रहा है वो तस्बीह करते हैं, यानी तस्बीह से मतलब यहाँ पे नमाज भी है और तस्बीह से मतलब वैसे तस्बीह करना भी है, अल्लाह का जिक्र करना भी। कब कब करते हैं? वुदूफ और आसवार, सुबह और शाम, सुबह और शाम तस्बीह करते हैं। यानी ये नहीं कि सिर्फ सुबह फजर के वक्त आते हैं और रात को ईशा के वक्त आते हैं या मगरिब के वक्त आते हैं, बल्कि मतलब ये है सुबह शाम को, मतलब जो इंसान काम मुसलसल करता रहता है, मुसलसल वो आते जाते रहते हैं मस्जिद के अंदर, उनका दिल मस्जिद में अटका होता है। आपको पता है कयामत के दिन जब कोई साया नहीं होगा तो सात किस्म के जिन लोगों को साया अल्लाह ताला के अर्श का मिलेगा उनमें एक वो भी है जिसका दिल मस्जिद में अटका रहता था। वो यानी मस्जिद से निकलता है जाता है वो काम करने, लेकिन उसका दे ध्यान वही लगा रहता है, जैसे एक माँ का बच्चे की तरफ लगा रहता है ना, कि माँ को बस सारा वक्त, जो स्पेशली बेबीज होते हैं तो माँ के दिमाग के ऊपर क्या हमेशा सवार होता है, बच्चा कहाँ है, क्या कर रहा है, वो सो है तो उसको भूख तो नहीं लगी, उसका डायपर तो नहीं चेंज करना, उसका मुसलसल वो चाहे कोई काम भी कर रही होती है ना उसके अंदर भी ध्यान बच्चे की तरफ होता है, इनका ध्यान मस्जिदों की तरफ होता है। सुभान अल्लाह, ये ऐसे कि मस्जिद ही उनको सवरा बहुत याद होती कि अब मस्जिद से निकले अब कब दोबारा मस्जिद आना। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई शख्स वुजू करे और अच्छी तरह वुजू करे फिर मस्जिद को सिर्फ नमाज की नियत से चले और कोई गर्ज नहीं तो हर कदम पे उसका एक दर्जा बुलंद हो जाता है, एक गुना माफ कर दिया जाता है, यहां तक कि वो मस्जिद पहुंच जाए। और जब तक जमात के इंतजार में बैठा रहता है ना, आप मसलन पहुंचे हैं तो अभी नमाज का टाइम नहीं हुआ, 10 मिनट अभी रहते हैं, आप जितनी देर वहां पे बैठे रहेंगे उसमें नमाज का सवाब मिलता रहता है और फरिश्ते उसके लिए दुआ करते रहते हैं, या अल्लाह इस पर रहमत नाजिल फरमा, या अल्लाह इसकी मगफरत करते हैं। जब तक वो किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाता और जब तक उसका वुजू नहीं टूट जाता तब तक फरिश्ते मुसलसल उसके लिए दुआ करते हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया में मेहमानों की तरह रहो जैसे कोई मुसाफिर होता है, और मस्जिदों को अपना घर बनाओ और अपने दिलों को रिक्कत की आदत डालो, रिक्कत यानी दिलों को नरम बनाओ, सख्त ना हो दिल, क्योंकि जन्नत में कौन लोग जाएंगे जिनके दिल परिंदों की तरह होंगे इतने नरम। तो मस्जिद को घर बना ले अपना, ये आपका सेकंड होम होना चाहिए, इसीलिए हमारा घर मस्जिद से करीब होना चाहिए, इसीलिए मस्जिदों की तामीर की बात है ना, अंतरफा बुलंद करने का मतलब ये भी कि मस्जिदें तामीर करना, इतनी मस्जिदें होनी चाहिए कि हर मोहल्ले में एक मस्जिद हो के लोग जा सके, इतनी दूर दूर नहीं होनी चाहिए कि 20 20 मिनट 15 15 मिनट जाना पड़े। रिजाल उन, ये ऐसे लोग हैं, ये ऐसे लोग हैं, ला तुलहीहिम तिजारत वला बैउ अन ज़िक्रिल्लाह वइक़ामि सलाति वइता ज़कात, ये ऐसे लोग हैं जिनको कि उनकी, ऐसे मर्द हैं जिनको उनकी तिजारत गाफिल नहीं करती है मस्जिदों में जाने से, वहां पे नमाज पढ़ने से, ना खरीदो फरोख्त अल्लाह के जिक्र से गाफिल करती है और इकामत सलात से और ज़कात देने से गाफिल करती है। यानी सबसे पहली बात ये कि ये रिजाल है, इससे पता चला कि एक तो बात इससे पता चली कि खास तौर पे मस्जिदों को जो आबाद करना है ना वो रिजाल का काम है, निसा का नहीं है। निसा के लिए तो बेहतर ये है कि वो घर में नमाज पढ़े और घर के भी अंदर के कमरे में। हाँ, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि अपन तुम्हारी औरतें जब मस्जिद जाने की इजाजत चाहें तो उनको मना ना करो, उनको इजाजत दे दिया करो, नहीं इजाजत तो जरूर है लेकिन उनके लिए बेहतरी किस में, उनके लिए ज्यादा सवाब किस में, घर में नमाज पढ़ने। कोविड के अंदर ये हुआ था कि बाज जगह पे उन्होंने कहा कि कम से कम लोग आए तो औरतों को कहा कि आप ना आए, तो औरतें लड़ना शुरू हो गई कि हमें क्यों मना करती है, आदमियों को क्यों, भाई आदमियों का ही काम है कि मस्जिदें आबाद करें, औरतों का काम नहीं है, ये आदमियों का ही काम है, आप जाएं आपका दिल चाहे आप शौक से चली जाएं, लेकिन ये ना समझे कि हमारे लिए भी उस तरह जरूरी है जैसे मर्दों के लिए, मस्जिद आबाद करना काम ही मर्द का है, ठीक है, इसलिए उनकी जिम्मेदारी है। तो लिहाजा मर्दों को, और मर्दों को ही तजारतें अपने अंदर मशगूल करती हैं ना, उनको ही तो गाफिल करती हैं कि नहीं जॉब का टाइम है या बिजनेस का टाइम है, नहीं अभी ये मेरी दुकान का टाइम। और खरीदो फरोख्त, अब जिस वक्त खरीदो फरोख्त हो रही है, गाहक बहुत आए हैं, तो उस वक्त अल्लाह के जिक्र से ये चीजें इंसान को रोक देती हैं, और नमाज पढ़ने से, जकात देने से भी तिजारत ही रोकती है ना, क्या है हमारा पता नहीं कितना नुकसान हो जाएगा, लेकिन इनको नहीं रोकती। ये ऐसे लोग हैं, ये फिर भी उनका, जिनका दिल मस्जिद में अटका रहता है ना, फिर उनको तिजारत रोकती नहीं। आप देखे ना, वरना बहाना सिर्फ यही बन जाता है, नहीं वीकडेज में तो बिल्कुल ही नहीं हम कर सकते ना, क्योंकि हमारी जॉब है, क्योंकि हमारी बिजनेस है। और ये मिसाल देखें कि एक रोज अब्दुल्ला बिन उमर जो थे वो बाजार से गुजरे, तो नमाज का वक्त हो गया, तो लोगों को देखा कि दुकानें बंद करके मस्जिदों की तरफ जा रहे हैं, तो फरमाए यही लोग हैं जिनके बारे में ये कहा गया। एक वक्त वो भी था, सऊदी अरब में भी ऐसा ही था, अब अल्लाह आलम है कि नहीं, अब तो सुना है कि उन्होंने ये लॉ खत्म कर दिया है, मगर लॉ हो या ना हो, जब लॉ था तो तब सब दुकानें आप देख लें वैसी की वैसी छोड़ के मस्जिद की तरफ जाते थे, जरूरी था उनके लिए। लेकिन बात तो वो है ना कि जब अल्लाह की मोहब्बत में कोई दौड़ता हुआ चला जाए, और दो सहाबा कराम थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, एक तिजारत करते थे, दूसरे सनत और हरफत का काम करते थे, यानी लोहार का काम करते थे और तलवारें बना के बेचते थे। तो जो पहले सहाबी जो तिजारत करते थे ना, उनका हाल ये था कि अगर सौदा तोलने के लिए उन्होंने सौदा तराजू में डाला हुआ है ना, और उधर अजान की आवाज आ गई है, वही सौदा छोड़ देते थे, तराजू रख देते थे और नमाज के लिए चल देते थे। ये नहीं देखते थे कि अच्छा कहा खड़ा हुआ, चलो उसको सौदा ही दे दूं। दूसरे बुजुर्ग का ये हाल था कि अगर गरम लोहे पर हथौड़े की जरब लगा रहे हैं ना, और कान में आवाज सुनाई दे गई है अजान की, तो हथौड़ा अगर कंधे पे उठाए हुए हैं, तो वहीं ऊपर किया हुआ ना जैसे बुलंद किए, तो पीछे से आगे नहीं लाएंगे, वहीं पे रखते हैं और नमाज को चल देते थे, और हथौड़े से जरब लगाना भी गवारा नहीं करते थे। तो उनकी तारीफ में ये कहा जाता है कि आयत उतरी। और भी जो लोग भी तिजारत पेशा है, जिनके भी जॉब्स हैं, जिनके भी खरीदो फरोख के काम है, बिजनेस डीलिंग्स है, उनके अंदर नमाज के लिए निकलना, अपने आप को फारिग करना नमाज के लिए, उनकी तारीफ बयान की जा रही है। और मैंने अभी आपको वो हदीस सुनाई है कि तीन लोग ऐसे हैं जिनके मामले में फरमाया कि जल्दी करने का फरमाया गया, कि ये तीन मौके या तीन चीजें जिनमें जल्दी करने का फरमाया गया, तो उनमें से एक क्या है कि जब नमाज का वक्त हो गया जाए तो नमाज अदा कर लें। अब हमारे भी काम होते हैं, हम किचन में काम कर रहे हैं, कुछ लेक्चर सुन रहे हैं, कुछ पढ़ाई का काम कर रहे हैं, तो कहते हैं ये पहले खत्म कर लूं फिर नमाज पढ़ लूं, ये कहते हैं ना। तो अगर हम वो काम छोड़ के और नमाज के लिए खड़े हो जाएंगे, तो अल्लाह ताला उस काम में भी हमारे लिए बरकत डाल देगा। और अगर हम वो काम पहले मुकम्मल करने बैठ गए और फिर हमने सोचा हम नमाज पढ़ेंगे, नमाज तो दोनों सूरतों में पढ़ लेनी है आपने, लेकिन काम में बरकत नहीं रहेगी, काम बिखर जाएगा और कामों में इंसान पड़ता चला जाएगा। तो अजर भी ज्यादा उसी का है जो नमाज अव्वल वक्त में पढ़ी जाए। तो सुबहान अल्लाह, ये कितनी बड़ी बात है कि इनको कोई चीज नहीं इनको रोकती, गाफिल करती कि नहीं जी अभी हम इतने मशगूल हैं। मतलब ज्यादा सादा यही होता है ना कि इंसान को पैसे जाते हुए नजर आते हैं कि हाय मेरा सौदा रुक जाएगा, मैं दुकान इस वक्त छोड़ के चला गया तो फिर क्या होगा, या हम औरतें हैं तो कहती हैं अच्छा इस वक्त खाना पका ही रही हूँ ना, तो इस वक्त बंद कर दिया चूल्हा तो क्या होगा, अपने लिहाज से सोचें, या मैं इस वक्त फोनों पर बात कर रही हूँ तो पता नहीं बात होनी ही नहीं दोबारा, तो छोड़ो बाद में नमाज पढ़ लूंगी। लेकिन सुबहान अल्लाह, इनको गाफिल नहीं करती, कितने प्यारे लोग हैं, इनको गाफिल नहीं करती इस चीज से कोई चीज भी, अल्लाह के जिक्र से, उसके नमाजों से, तिलावत से, और इताअ ज़का से। अच्छा ये जो दूसरी भी पीछे भी आई है ना, अल्लाह का जिक्र बुलंद करना, इसका मतलब मस्जिदों में अल्लाह ही का जिक्र बुलंद होना चाहिए, औरों का नहीं होना चाहिए, और लोगों का नहीं होना चाहिए कि वहां पे और लोगों की बातें की जा रही। और अल्लाह के जिक्र के अंदर नमाज भी है, तिलावत कुरान भी है, वाज़ो नसीहत भी है, तालीम भी है, दर्स भी है, दीन की जो भी तालीम के काम है वो सब है, ठीक है। तो अच्छा ये भी है, इब्ने अब्बास ने ये अंतरफा का जो एक माना किया ना, कि उसमें बेहूदगी ना करें मस्जिदों में, हमें क्या क्या बातें पता चली, मस्जिदों को तामीर करना और मस्जिदों को आबाद करना भी उसकी बुलंद करना है ना। देखिए बुलंदी किसी चीज की कब तभी होगी जब वो आबाद होगी, वीराना जो है वो उसको बुलंद करना तो नहीं है ना, ये भी उसका एहतराम है कि मस्जिदें आबाद की जाए। हर एक की जिम्मेदारी अपने मोहल्ले की मस्जिद को आबाद करने की है कि वो जो अपने करीबी मस्जिद है उसको आबाद करे। अगर कोई मस्जिद वीरान है तो वो सारे जो इर्द गिर्द रहने वाले मोहल्ले वाले लोग हैं उन सबके का ऊपर इसका यानी इल्जाम जाता है कि वो क्यों नहीं मस्जिद को आबादी के लिए कोशिश कर रहे हैं। ये मस्जिद का पाक साफ रखना, खास तौर पे सहाबा कराम जुमे के दिन मस्जिदों को बहुत खुशबू लगाते थे, खुशबू की धुनी, और इसलिए कि उस दिन ज्यादा लोगों ने आना होता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म भी दिया है कि मोहल्लों में मस्जिदें बनाई जाएं और पाक साफ रखी जाएं और खुशबूदार रखी जाए। ठीक है, तो खुशबू का भी एहतमाम मस्जिद में करना चाहिए ताकि लोग खुशबू से इबादत कर सके। और ये भी देखें एक बात है कि मस्जिदों को बहुत ज्यादा भी तज़ीनो आराइश की जरूरत नहीं, जैसे कि यहूदो नसारा करते हैं कि आप उस पर इसराफ करना शुरू कर दें। इसराफ की जरूरत नहीं होती, मगर हाँ अच्छी तरीके के साथ, सलीके के साथ मस्जिद को रखा जाए, पाक साफ रखा जाए, खुशबुएं लगाई जाए, उसके मीनार बना सकते हैं ताकि लोगों को दूर से नजर आ जाए। लेकिन जहां तक ये सवाल है कि इतना उसके अंदर इसराफ कर रहे हैं, बाथरूमों में भी क्या क्या चीजें लगाई हुई हैं और ऐसे उसको करा, इसकी जरूरत नहीं। बल्कि कयामत की निशानियों में से एक निशानी बयान की गई है कि लोग मस्जिदों के बारे में आपस में फख्रो गुरूर करेंगे कि जी मेरी मस्जिद ऐसी है और तुम्हारी, वो कहता है मेरी ऐसी है। इसी तरह मस्जिदों का अदब एक ये भी है कि वहां पे अपनी गुमशुदा चीजों का ऐलान ना कराया जाए। एक आदमी मस्जिद में अपने ऊंट को ढूंढता हुआ आया, कहने लगा कि कोई मतलब ऊंट के लिए कि इस मेरा ऊंट ऐसा था और ऐसा था और उसका किसी को पता है, तो आपने बद्दुआ दी थी कि अल्लाह करे तुझे ना मिले, क्यों मस्जिदें इस काम के लिए तो नहीं बनाई गई। इसी तरह मस्जिदों में खरीदो फरोख्त भी नहीं करनी चाहिए, तिजारत नहीं करनी चाहिए। आजकल ये क्या होता है कि वो कपड़े लेके और चीजें लेके मस्जिदों में बेचना शुरू कर देते, ये नहीं करनी चाहिए। वहां अशार गाए जाने से भी मना किया गया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसे मस्जिद में खरीदो फरोख्त करते हुए देखो तो कहो अल्लाह तेरी तिजारत में नफा ना दे, और जब किसी को गुमशुदा जानवर मस्जिद में तलाश करते हुए पाओ तो कहो अल्लाह करे तुझे ना मिले। तो क्योंकि ये लायक नहीं है ना मस्जिदों के, इसी तरह मस्जिदों को रास्ता नहीं बनाना चाहिए कि राह गुजर बना ले कि यहाँ से गुजरते हुए निकलना है, और मस्जिदों में कच्चा गोश्त ना लाया जाए, ना यहाँ पे हद लगाई जाए कि कहीं खून ना गिरे। इसीलिए हाइजा औरत को भी मना किया गया कि वो नहीं यहाँ पे बैठे, ना यहाँ पे ज्यादा बातें और किस्से कहानियां कहा जाए करे जाए, ना इनमें बाजार लगा जाए। देखिए लोगों का एक जहन मस्जिद का कुछ और होता है जब वो बाजारों में लग जाते हैं। अगर आपने मीना बाजार आपने लाके एक फनफेयर सा लगाया हुआ मस्जिद के अंदर, तो आप मुझे बताएं कि लोगों का क्या ध्यान रहेगा नमाज की तरफ। इसी तरह बच्चों को खेल कूद से मना किया जाए, दीवानों को मस्जिद से रोका जाए, क्योंकि दीवाने अगर मस्जिद के अंदर आएंगे तो क्या होगा, जो पागल होंगे उनके ऊपर लोग हंसेंगे मजाक करेंगे, लोगों का ध्यान फिर कहीं और जाएगा। देखिए कितनी सारी चीजें बताई गई है ना। इसी तरह ऊंची आवाजें करने से मना किया गया, हजरत उमर ने उन लोगों को कहा था ना जो ऊंची आवाज कर रहे थे कि तुम कहाँ से आए, वो कहने लगे हम ताइफ से हैं। फरमाया अगर तुम यहाँ के रहने वाले होते ना तो मैं तुम्हें सजा देता, तुम नबी की मस्जिद में ऊंची ऊंची आवाजों से बोल रहे हो। एक दफा किसी को हजरत उमर ने ऊंची आवाज में बातें करते हुए सुना मस्जिद में, तो फरमाया जानते भी हो तुम कहाँ हो, तो ये सोचे कि मस्जिद का कितना एहतराम है, कितनी उसकी ताजीम करने की जरूरत है। इस तरह ये जब लोग मस्जिदों के अंदर जो जाते हैं और अपनी तिजारत भी छोड़ के, ये तो इनके बारे में हदीस आती है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कयामत के दिन जबकि अव्वल आखिर सारे जमा होंगे, अल्लाह ताला एक मुनादी को हुक्म देगा, वो बावाजे बुलंद के ऐलान करेगा जिसको सारे अहले महशर सुनेंगे, कि आज सबको मालूम हो जाएगा कि अल्लाह के हाँ सबसे ज्यादा मुअज्जज कौन है, बुजुर्ग कौन है। वो क्या फरमाएगा, वो मुनादी क्या कहेगा, वो कहेगा वो लोग खड़े हो जाएं जिनको लेन देन और तिजारत अल्लाह के जिक्र से नहीं रोकती थी, बस वो खड़े हो जाएंगे और वो बहुत ही कम होंगे। वाकई आप देख लेना कहाँ कोई अपनी तिजारत छोड़ता है, कोई काम भी नहीं छोड़ता। तिजारत तो बहुत बड़ी बात है छोड़नी, छोटे छोटे काम भी नहीं, मामूली काम भी नहीं हम छोड़ते। तो कहा जाएगा, तो देखा जाएगा वो बहुत ही कम होंगे, तो कहा जाएगा सबसे पहले इनको हिसाब से फारिग कर दिया जाए। तो आप फरमाते हैं कि उनकी नेकियों का अजर यानी जन्नत भी उनको मिलेगी और मजीद भी मिलेगा जिसका आगे जिक्र आ रहा है। तो ये वो लोग होंगे इनको अल्लाह ताला कितना नवाजेगा उस दिन, क्योंकि ये अल्लाह की खातिर अपनी तिजारतें छोड़ते थे, भागते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मस्जिद आते थे ना, तो फरमाते थे आउज़ु बिल्लाहिल अज़ीम व बि वजहिकल करीम व सुल्तानिहिल क़दीम मिनश शैतानिर रजीम, कि जब कोई ये पढ़ लेता है तो शैतान कहता है मेरे शर से ये सारे दिन के लिए महफूज हो गया। और मुस्लिम में हदीस भी है कि जब आप मस्जिद में जाएं तो आप दुआ करें अल्लाहुम्मा इफ्तह ली अबवाब रहमतिक, और जब निकलने लगे तो अल्लाहुम्मा इफ्तह ली अबवाब फदलिक। और ये भी है एक हदीस के अंदर आता है कि इब्ने माजा की, कि आप पहले सलाम भेजें, सलातो वसलाम अला रसूलिल्लाह, ये पढ़ के फिर उसके बाद आप अल्लाहुम्मा इफ्तह ली वाली दुआ पढ़ें। ठीक है, तो मस्जिद के आदाब हैं, मस्जिद जाएं जरूर लेकिन आदाब का ख्याल रखें। खास तौर पे औरतें अगर मस्जिद जाएं तो ये ना करें कि वो मर्दों की भी नमाजों को खराब कर दें, कि इतनी जेबो जीनत करके आ जाएं और जेबो जीनत भी नजर आ रही, ऐसे ऐसे कपड़े पहने होते हैं, ऐसे टाइट और फिर मेकअप भी है और फिर ऐसी ज्वेलरी भी, और सिर्फ ऊपर एक स्कार्फ लिया हुआ और उसको समझ लिया कि बस जिन्होंने अबाए पहने वो इतने जर्क बर्क अबाए पहन के आ जाएं, कि वो भी एक मसला। खुशबुएं लगा के आ जाती हैं कि पता नहीं हम भी खुशबू लगाएं, जुमे का दिन है खुशबू लगा के जुमा पढ़ने जा रहे हैं, ये किसने आपको कहा? तो अगर आपको दिल करता है कि आप बहुत जेबो जीनत करें ना, तो फिर आप घर में ही बैठ के नमाज पढ़ें, खुशबू लगा के पढ़ लें घर में, कोई मसला नहीं। वो खुशबू लगाएं, वो जीनत वाले कपड़े पहन लें और फिर घर में ही नमाज पढ़ें, लेकिन मस्जिद में ना जाएं खुदा के लिए। अगर मस्जिद में जाना है तो फिर आपको पता होना चाहिए कि मस्जिद में अपने पूरे पर्दे का ख्याल करके जाना। हमारा भी ये एक मीटिंग पॉइंट हो जाता है कि गेट टुगेदर की जगह, चलो मस्जिद जा रहे हैं अपने कपड़े भी दिखा दें, मैंने कौन से अबाए खरीदे हैं वो भी दिखा दूँ, और मेकअप वगैरह भी फोल के लोगों ने देखना है ना, इतने लोग आए होते हैं तो मस्जिद में बन संवर के जाऊं, इसकी जरूरत नहीं है। बेहतर है कि आप तरावी ऐसी घर में ही पढ़ लें। यखाफूना यौमन ततकल्लबु फीहिल कुलूबु वल अबसार, ये नहीं है कि उस मुल्क का लॉ है कि डंडे मार मार के लोगों को मस्जिद में ले जाया जा रहा है, बल्कि वो खुद ही जाते हैं इसलिए कि वो डरते हैं उस दिन से। किस दिन से? जिस दिन आंखें और दिल उलट पुलट दिए जाएंगे, यानी एक कयामत के दिन से डरते हैं वो। इतना उनके अंदर खौफ इलाही होता है कि मुझे अल्लाह के आगे खड़े होना है, वो दिन उनको याद दिलाता है कि उन्होंने ये करना है। देखें, जिसको अल्लाह के आगे खड़े होने का डर होगा ना, वो ही होगा जो ये सारे अहकामात को मानेगा, चाहे वो पर्दे के हैं, चाहे वो ये जो हमने अभी पढ़ा है कि मस्जिदें आबाद करने के हैं, मस्जिदों के अंदर शोरोगुल ना करने के हैं, मस्जिदों की ताजीम करने के हैं, मस्जिदें बनाने के हैं, ये सारे काम वो ही करेगा जिसको अल्लाह के आगे खड़े होने का एहसास है, जिसको खौफ है। और जिसको ये खौफ ही नहीं है, उसको परवाह ही नहीं, मस्जिद है, मस्जिद को आबाद करना है नहीं करना है, हम इसके बगैर ही भाई अच्छे मुसलमान हैं, हमें पर्दा करें नहीं करें अल्लाह ताला ने क्या हुक्म दिया है, हमें क्या इससे फर्क पड़ता है, हम तो ऐसे ही बड़े अच्छे मुसलमान हैं। वो बस इसी में खुशफहमी में ही रहते हैं कि हमसे ज्यादा तो कोई अच्छा ही नहीं, आप अपने आप को ज्यादा अच्छा समझते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो खौफ होता है ना, ये इंसान से फिर अमल करवाता है, लियज़ियहुमुल्लाहु अहसना मा अमिलू, ये जजा है ताकि अल्लाह ताला आपको जजा दे, उनको जजा दे किसकी, बेहतरीन किसकी, वो जो उन्होंने अमल किए, अल्लाह ताला उनको उनके अमलों की जजा देगा। ये नतीजा है, ली का मतलब नतीजा, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस। ये इस के वो डरते रहते हैं उस दिन से, देखे ना वो दिन कितना मुश्किल दिन है, जिस दिन के वाकई जो दिल है वो मुंह को आ रहे होंगे, कलेजे कहते हैं ना मुंह को आ रहे हैं, जैसे आप किसी रोलर कोस्टर पर बैठ जाए, जब वो नीचे आने लगे तो जिनको डर लगता है उनको ऐसा लगता है दिल सीने में नहीं है, जैसे दिल ना हलक में धड़क रहा, और कलेजा वाकई मुंह को आता और आंखें भी उबल के बाहर आ जाती। तो वो इतना उस दिन से डरते हैं, वो दिन बहुत खौफ का दिन होगा, इंसान ही घबराहट का शिकार होंगे, उनको समझ नहीं आ रहा होगा कि अब हमारा होगा क्या, दिल हौला रहे होंगे। तो अल्लाह ताला इसके बदले में जो वो ये काम करते थे उनको आसन, आसन भी अफजल तफजील का सीगा, यानी वो एग्जेजुरेशन है इसमें, सुपरलेटिव बेस्ट जिसको कहें आसन, अल्लाह ताला उनको आसन जजा देगा, बेस्ट जजा, बेस्ट बदला। माँ आमिलू, अब ये देख लें जो उन्होंने अमल किए, बातें नहीं, सिर्फ दर्स नहीं दिए, लेक्चर नहीं देते रहे, खुशफहमियों का शिकार नहीं रहे, हम तो बहुत अच्छे हैं, अमल करके दिखाया। देखिए अमल ही है ना जिस जो जिससे जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नुम, वाकई अमल करेंगे। जब उन आदमियों को तो तिजारतें हैं जो रोकती हैं, हमें घर और बच्चे रोकते हैं, ठीक है, यही चीजें हैं ना जो हमें सबसे ज्यादा अल्लाह के जिक्र से रोकती हैं, नमाज से रोकती हैं, कुरान से रोकती हैं। तो लेकिन वहां पे तो जजा अमल की मिलनी है, हम कहते हैं अमल हमसे किया ही नहीं जाता, तो अमल के बगैर कहाँ पे लिखा हुआ है कि बातों की जजा वहां पे मिलेगी, कि हम बातें बड़ी अच्छी करते थे, हमें शौक बड़ा था, नेक बनने का शौक तो था हमें, बस शौक ही शौक था, करा कुछ नहीं, सुनते गए पढ़ते गए फिर भी नहीं कुछ किया। और अमल आसान कब होता है, जब इंसान सुन के फौरन कर ले, और वो मुश्किल होता जाता है जब इंसान सुनता है फिर एक कान से सुना दूसरे से निकाल दी, जैसे सुना ही नहीं, फिर दोबारा सुनाया गया, फिर सुना दूसरे से निकाल दिया, फिर सुना फिर दूसरे से निकाल दिया, तो तब अमल मुश्किल होता जाता है, फिर इंसान ढीठ बन जाता है, इसको फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो लोग ऐसे होते हैं कि वो सुनते हैं, समयाना वाताना करने वाले लोग, वही बाअमल होते हैं, वही यजीदहुम मिन फतली, अल्लाह ताला उनको आसन भी देगा और अपने फजल से और ज्यादा देगा। फजल क्या होता है, वो जो इंसान का हक नहीं है, उसका हकदार नहीं था वो इस चीज का, लेकिन अल्लाह ताला उसको और ज्यादा उससे, जिसको हम कहते हैं ना एक तो किसी की पे और एक उसके ऊपर टिप, ठीक है, वो उसका हक नहीं था टिप लेना, लेकिन आपने अपनी मर्जी से दे दी, अल्लाह ताला अपनी मर्जी से उसको और बढ़ा के दे देगा। वल्लाहु यरज़ुकु, अल्लाह ताला रिस्क देता है, मैं यशाउ भी वही हिसाब, अल्लाह जिसको चाहे बेहिसाब अता फरमाए। अल्लाह ताला ने ये जो हमें 10 और 70 और 700 और इतने ज्यादा अजरो सवाब के वादे दिए हैं, ये हमें समझाने के लिए दिए हैं कि अल्लाह ताला फिक्र ना करो, बहुत कुछ देगा, बहुत कुछ देगा, लेकिन ये मतलब नहीं कि बस ये 70, 7 और 700 ही है, बल्कि अल्लाह ताला को जिसका अमल पसंद आ जाए अल्लाह ताला उसको बेहिसाब अता करेगा, बेहिसाब, जिसका अहाता कोई कर नहीं सकता, हिसाब ही नहीं कर सकता। तो हमारी सेटिस्फेक्शन के लिए हमें लीस्ट बताया गया, मगर अल्लाह ताला जो अजर देने वाली जात है ना, क्योंकि अल्लाह की जात बाबरकत है, बरकत में मैंने आपको क्या बताया, खैर ही खैर, और ऐसी खैर जो बढ़ती जाती, तो इस उसकी जात में अपने बंदों के लिए खैर ही खैर है और वो खैर बढ़ती ही जाएगी। तो अल्लाह ताला इतना अता फरमाया क्योंकि उसके खजानों में कोई कमी थोड़ी है और उसको दे के कोई कम थोड़ी हो जाना है, तो वो इतना अता फरमाएगा कि बेहिसाब। तो देखिए ना, वो अल्लाह जब देगा, इतना देगा, फिर इसके लिए फिर कारोबार छोड़ना या इसके लिए छोटे मोटे अपने काम छोड़ना कोई इतनी बिग डील नहीं। फिर आगे अल्लाह ताला ने दो मिसालें बयान फरमाई, ये दो मिसालें ऐसे ही हैं जैसे सूरह बकरा में आप देखें दो मिसालें हैं ना, वो मुनाफिकीन की दो मिसालें, एक आग की है एक पानी की है, ठीक है, और सूरह रात में भी अल्लाह ताला ने हिदायत और इल्म की मिसाल दी है, इस तरह यहाँ पे मिसाल दी है दो किस्म के काफिरों की समझ लें। पहली मिसाल में 39 आयत में वो लोग हैं जो अमल करते हैं, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत अमल करते हैं, मगर उनका अमल कैसा है वो यहाँ पे पता चलेगा, यानी उनको थोड़ा बहुत है कि मैं आखरत में कुछ मिलेगा, थोड़ा बहुत कुछ आखरत का अकीदा उनके अंदर है, मगर उनका अमल ही सही नहीं। और दूसरे तो वो हैं कि जो खुद भी गुमराह हैं लोगों को भी गुमराह करते हैं। तो पहली मिसाल देखते हैं, वल्लदीन कफरू आमालुहुम, और वो लोग जिन्होंने कुफर किया आमाल उनके किस तरह से हैं, कसराब मानिन सराब की। देखिए मिसालें हम बहुत सारी पढ़ रहे हैं ना, तो पहले हमने नूरुन अला नूर की मिसाल पढ़ी है, अब हम जुल्मतों पे जुल्मतों की मिसाल पढ़ेंगे, अंधेरों पे अंधेरों की मिसाल, और यहाँ पे आमाल सराब की तरह। सराब आपको पता है मेराज जिसको कहते हैं, यानी सहरा में आप जाते हुए देखें तो दूर ऐसा लगता है पानी है, कभी बहुत गर्मी के दिन हो ना तो सड़क पे भी इवन आप ड्राइव करते हैं तो दूर ऐसा लगता है पानी पानी है, वो पानी नहीं होता ना, वो तो सिर्फ चमक होती है। तो उनके आमाल ना सराब की तरह, बकीअतिन जो एक चटियल मैदान में, यह सबहु ज़मआनु माँ, समझता है उसको जमान प्यासा, उसको क्या समझता है कि ये पानी है, तो वो उसकी तरफ दौड़ता है ना, हत्ता इज़ा जाअहु लम यजिदहु शैया, जब तक जब वो पहुंचता है उस तक तो वहां पे कुछ भी नहीं होता, वजद अल्लाह इंदहु, और अल्लाह को पाता है उसके पास, फवफ्फाहु हिसाबहु, तो अल्लाह ताला उसको पूरा पूरा देता है हिसाब, वल्लाहु सरीउल हिसाब, अल्लाह बहुत जल्द लेने वाला हिसाब। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी, ये वो काफिर हैं जो के ऐसी नेकियां तो करते हैं, कुछ नेकियां कर रहे हैं, लेकिन उनका जो दीन है ना वो खुद साख्ता दीन है, खुद ही बनाया हुआ है, खुद ही सोच सोच के। अब जैसे आज के गुमराह के कितने सारे फिरके हैं, कादियानी हैं, इस्माइली हैं, इन्होंने खुद ही अपना दीन गढ़ा हुआ है, उस दीन का ना कुरान से कोई ताल्लुक है, ना हदीस से कोई ताल्लुक है, आप सरसम की सुन्नत से कोई ताल्लुक भी नहीं। वो भी लोग तो नेकियां करते हैं, ये इसी तरह बिदती, कई बिदती हैं वो भी नेकियां कर रहे हैं, अपनी तरफ से तो नेकी करके कर रहे हैं ना, बिदात है, खुद ही निकाले हुए चीजें हैं, को ना उनका कुरान में ना सुन्नत में कहीं कोई नामो निशान भी नहीं मिलता, बस निकाल के बैठ गए। अच्छा वो अमल उनके बड़े करके खुश होते हैं, हम बड़ी नेकियां कर रहे हैं, हम तो बड़े सही चल रहे हैं, हम तो पता नहीं हमारे जाके वहां पे क्या मिलना है। अब वो उनके माने जैसे जैसे शराब है, शराब की इंसान जो प्यासा है वो पानी समझ के उसकी तरफ भागता है ना, उसको लगता है कि ये मेरी नेकियां हैं, ये तो मुझे बचा लेंगी क्यामत के दिन, लेकिन जब वो उसके पास पहुंचता है तो क्या है, कयामत के दिन जब वो अपनी नेकियों को पाएगा तो उसको पता चलेगा ये तो शराब था, ये तो पानी है ही नहीं कि मेरी प्यास बुझ जाए, इससे आज के दिन मुझे यहाँ पे निजात मिल जाए, ये तो शराब था, ये तो कुछ भी नहीं, और वहां पे अल्लाह ताला है जो उसका हिसाब लेने के लिए। अब ना तो पीछे मुड़ के जा सकता है कि जाके पानी ले आए, यानी कुछ नेकियां करके आ जाए, कुछ अपने लिए कुछ जमा कर ले, और अल्लाह ताला वो तो बहुत जल्द है हिसाब लेने में, आप तो टाइम खत्म हो गया। ये ऐसे गुमराह कुन फिरकों और ऐसे गुमराह कुन लोगों के लिए बहुत बड़ी मिसाल है, बहुत आला मिसाल है, और बहुत समझने वाली चीज है कि कहीं हम भी तो अपने आमाल को ये नहीं समझ ले कि ये ही अमल हमारे नेकी के अमल है और इन्होंने हमें बचा लेना है, लेकिन वहां पता चले कि ये तो शराब था, हमने इसको पानी पानी जान बचाने के लिए है ना, प्यासे के लिए पानी क्या है, लाइफ है, राइट, अब उसके लिए नेकी क्या है, लाइफ है, वहां पे वो उसकी निजात है, वहां पे नेकी, अब वो नेकी निकल आई शराब, अब वो क्या करे, यहाँ इसको इसने पानी समझा था ना कि ये है जो मुझे बचा लेगी, लेकिन वो शराब था, वो इसी खुशफहमी में चलता रहा कि पानी है तो सही, वो उसको नजर आ रहा है ना वो पानी है, पानी है, मगर वो पानी नहीं था, ये धोखा था, शराब धोखे को भी कहते हैं, ये उसकी खुशफहमी थी, ये बेहकीकत चीज थी जो पानी नजर आ रही थी, समझ आई, बहुत डीप मिसाल है ये, तो कितना जरूरी है कि इंसान इस जिंदगी में आंखें खोल के देखे और शऊर के साथ जिंदगी गुजारे, कि ये तो नहीं कि मैं किसी ऐसे कायद के पीछे लग पड़ूं कि जो मुझे गुमराह करता फिरे, किधर भी अपनी ख्वाहिशात का दीन बनाया हुआ, खुद साख्ता दीन बनाया हुआ, उसी अपने ही तौर तरीके निकाले हैं, और बस उसको कह रहे हैं कि बस हमने ये कह दिया कि ये ठीक है तो यही ठीक है, अच्छा ये नहीं है ये हमने कानून बना दिया, ये हमने ऐसे कह दिया है, बस खुद ही कानून बनाते रहते हैं, खुद ही दीन अपना बनाया हुआ, खुद ही, जबकि उसके असल दीन से कोई ताल्लुक ही नहीं, तो फिर उनके लिए तो शराब ही होगा ना। दूसरा एक ये भी लोग उनमें शामिल हैं जिनकी नेकियां सराब हो जाएंगी उस दिन, जो लोग नेकी तो बहुत कर रहे हैं, इतनी नेकियां कर करके थकते जा रहे हैं, ढेर लगा रहे हैं, और नेकियां उनको लग रहा है कि ये ही है जो हमें निजात देगी और हम बड़े खुश हैं कि हम इतनी नेकियां कर, लेकिन साथ रियाकारी, साथ धोखा, ये कि अपने आप को इस धोखे में रखना कि बस हम इतने नेक काम कर रहे हैं तो जाहिर है हमारी निजात तो हो जाएगी, मगर साथ में उसके मिक्स किया हुआ रियाकारी को, दिखावे को, शो ऑफ को, मुकाबलेबाजियों को, साथ में इसके ये है कि लोगों में मेरी पजीराई हो जाए, लोग मुझे नेक समझ लें, लोगों की नजरों में मैं जग जाऊं, तो उनकी नेकियां भी सराबी हैं, अल्लाह अकबर। और आप ये देखें, अल्लाह ताला माफ करे कि बाज दफा इंसान नेकी कर भी लेता है, लेकिन साथ साथ इसको ना ये जो लोगों के अंदर बस एक अपनी वैल्यू होने का जो शौक होता है ना कि मैं लोगों में बहुत जच जाऊं, लोग ना मेरे फैन बन रहे हैं, लोग मेरी बड़ी तारीफें करें, ये जो हमने पीछे आए थे बड़ी पर्दे की में, ये क्या क्या चीज है जो इसमें इंसान को दूर रखती है इन पे अमल करने से, कोई भी चीज नहीं, यकीन करें कोई और चीज नहीं सिवाय लोगों की तारीफों के, लोग हमारी तारीफें करते हैं, और ना तो किसी ने आपको मना थोड़ी किया कि आप बने संवरे, इससे मना तो नहीं किया ना, लेकिन बस वो हमें लोगों को दिखाना है ना और लोगों की तारीफें लेनी, वो हमारे लिए हलाकत बन जाती है, क्योंकि इसी तारीफ के लिए फिर हम नेक बीबी भी बन बन के दिखाते हैं, इन्हीं तारीफों के लिए हम नेक काम भी करते हैं, इन्हीं तारीफों की खातिर हम उल्टे सीधे होके भी कुछ भी करते फिरते हैं, इन्हीं तारीफों के लिए हम आप देख लें कि फिर जो गुनाह करते हैं वो भी इन्हीं तारीफों के लिए करते हैं, गुनाहों में भी तो इसीलिए जाते हैं ना कि ये उनकी तारीफें मिल जाए, उनमें एक्सेप्टेबल हो जाऊं, वो मुझे आउटकास्ट ना कर दें, मेरे से दोस्ती ना छोड़ दें, खानदान के अंदर मेरी वाह वाह हो, कितनी अच्छी ड्रेसअप होती है, क्या जबरदस्त है इसका फिगर, कैसी ये हसीना लगती है, इसके लिए जो एक सेकंड की वो तारीफ होगी, तारीफ करने वाले भी मिट जाएंगे और तारीफें भी मिट जानी है, वो एक सेकंड की बात है, वो उसी वक्त हवा में उड़ जाती है और हम भी मिट जाएंगे, और उसके बाद क्या है, अल्लाह ताला को अपने सामने पाएंगे जो हिसाब लेने के लिए तैयार होगा, फिर क्या गुजरेगी, सोचें जरा, सोचें ना कि एक चीज है, इंसान ने नेकियां तो खास तौर पे जिनको रयाकारी के साथ बर्बाद कर दिया, ऐसे ही है जैसे फूड है, आपने बड़ा फूड स्टोर करके रखा, आपने सोचा कि जब मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं ये निकाल लूं, अब इतनी जरूरत पड़ जाती कहीं और खाना नहीं है और आपने वो खाना निकाला बड़े शौक से कि अब मैं इसको खाऊंगी, किसी और के पास तो है नहीं मेरे पास है, तो देखा उसमें सारे में फंगस लग गई, उरली लग गई उसको और सारा खराब हुआ पड़ा, उसको खा ही नहीं सकते, इसी तरह इनकी नेकियां उसको रियाकारी चाट लेती है, ये जो इस चीज की चाहत है कि लोगों में मैं अच्छी नजर आऊं, ये उन नेकियों को सबको चाट लेगी, वहां जाके ये शराब होगा, ये पता चलेगा ये तो शराब है जिसको मैंने पानी समझा, तो सब कुछ भी नहीं है सिर्फ धोखा था, मैं यही सोचती रही कि मैं बहुत नेकियां कर रही, अल्लाह अकबर। और वहां तो फिर देख लेना कि टाइम इज ओवर, देन फिर आपको कोई मौका थोड़ी मिलेगा कि दोबारा अपनी नेकियों को रिवाइज कर लें, दोबारा इनको ठीक कर लें, तो हम शराब को ही आज बहुत कुछ समझ के बैठे हैं, ये शराब है ना जो पानी नजर आ रहा है, इसको बहुत कुछ समझे में, इसको हकीकत समझे में हकीकत नहीं है, ये वहां जाके समझ आएगी कि ये शराब था, आज पानी ही नजर आ रहा है, जिसकी चीज की तरफ भी हम भाग रहे हैं ना, हमारे भी कुछ चीजें हैं जिनको हमने पानी समझा हुआ, हम उनके पीछे भागते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं, वो चाहे तारीफें हैं, चाहे वो लोगों के अंदर एक्सेप्टेबिलिटी है, चाहे वो लोगों के अंदर अच्छा मकाम पाना है, इज्जतें पाना है, वो है, वो सब शराब है, लेकिन हमने पानी समझा हुआ, और एंड ऑफ लाइफ में आके पता चलता है, मरते वक्त ही पता चल जाता है कि सब शराब था, इसके पीछे हम भागते रहे। अकबर, जैसे मसलन आप अपने बैंक में कुछ जमा कराते रहे कराते रहे, आज आपको लग रहा है आपके हिसाब से मिलियन डॉलर हो गए, जब वहां जाके देखते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं आपके अकाउंट में तो कुछ भी नहीं, खाली है आपका अकाउंट। तो आपको तो हार्ट अटैक होने वाला हो जाएगा कि ये क्या हो गया। यही हाल है इनका, नेकियां करते जाते करते जाते करते जाते, लेकिन उनमें कोई गड़बड़ है, कोई प्रॉब्लम है। मिसाल के तौर पर अपने अकाउंट में जिसमें जमा कराना, आपने एक डिजिट सिर्फ सही नहीं लिखा था, वो किसी और के अकाउंट में चला गया, अब आपको नहीं मिल सकता। तो इसी तरह वहां पे ये है कि नेकियां कर रहे हैं कर रहे हैं कर रहे हैं, ये नहीं कि कर नहीं रहे, कर रहे हैं, मगर वो का शराब है, शराब की माने दें, शराब भी कभी किसी को हेल्प करता है, कभी किसी को निजात दे पाता है, शराब से भी कभी किसी की जिंदगी बचती है, नहीं ये धोखा है। आओ का जुलुमात, या फिर इनके अमाल कैसे हैं जुल्मतों की तरह। देखिए वहां पे नूर वाहिद ही था, उसकी जमा अनवार नहीं आया, लेकिन जुल्मत की जगह जुलुमात आया, क्योंकि अंधेरे ना कई तरह के होते हैं, अंधेरा कोई एक थोड़ी होता है। या इनके आमाल जुलुमात की तरह, पहले मिसाल में कैसी थी, शराब की तरह, या जुलुमात की तरह, फी बहर लुज्जी, वो अमल ही अंधेरे हैं, इतने अंधेरे वो अमल हैं, ऐसी आमाल हैं कि जो किसी काबिल ही नहीं है, और ऐसे अंधेरे फी बहर लुज्जी यग्शाहु मौजुन मिन फौकिही मौजुन मिन फौकिही सहाब। अल्लाह अकबर, कि काफिर के अमल ऐसे हैं कि जैसे अंधेरे, और अंधेरे ही नहीं है, इतने गहरे अंधेरे कि जिस पे मौज पे मौज, मौज पे मौज, उसके ऊपर भी बादल, गहरा समंदर हो आप सोचें, और उसके अंदर मौजों पे मौजें हो और ऊपर बादलों का साया हो, तो अंधेरे पे अंधेरा हो गया। अब इसके अंदर वहां पे हाल क्या है, जुलुमातुम बादुआ फौका बाद, ऐसी जुल्मतें हैं कि एक के ऊपर एक जुल्मत, एक के ऊपर एक अंधेरा, और उसमें इतना अंधेरा है, इदा अखरज यदहु लम यकद यराहा, वो अगर अपना हाथ भी निकालता है तो उसको कुछ दिखाई नहीं देता, उसको कुछ नजर ही नहीं आता, अपना हाथ भी नजर नहीं आ रहा। आपको पता है एक डाइवर था, उसने सेलर था, डाइविंग करता था, उसने ये आयात सुन के इस्लाम कबूल कर लिया, उसने कहा वो पैगंबर जो ये बता रहे हैं कि समंदर के नीचे ऐसा अंधेरा होता है, तो ये बात तो कोई बता ही नहीं सकता इस, जब तक कोई समंदर के अंदर नीचे ना चला जाए। कि उसने कहा हमें ऐसा ही होता है, जब हम नीचे जाते हैं तो ऐसा ही होता है कि वहां पे इस कदर अंधेरा होता है कि हाथ को हाथ सुझाई नहीं देता, इतना अंधेरा होता है वहां पे, इतना अंधेरा होता है। अल्लाह हु अकबर। तो एक तरह से पिछली मिसाल, अगर आप ये भी कह सकते हैं कि पिछली मिसाल मुनाफिक की है, या ऐसे काफिर की है जिसने नेकियां तो की लेकिन उसका अकीदा ही सही नहीं था, या ऐसे की है जो रियाकारी करने वाला है कि उसके उसके अमल सारे नेकियां जाया ही हो गई, लेकिन ये वाली मिसाल ऐसे की है जो अंधेरों का मुसाफिर, उसने कुछ करके ही नहीं दिया, वो अंधेरों में ही रहा, गुमसान अंधेरे, और ये अंधेरे गफलतों के, कुफर के, शिर्क के, बिदात के, हर तरह के ये अंधेरे ही अंधेरे हैं, जिहालत के, और इन अंधेरों में वो गुम रहा, और एक के ऊपर एक लहर है अंधेरे की, ऐसे कि उसको कुछ सुझाई नहीं देता। यानी उस बंदे ने इतना नहीं किया कि वो अपने इर्द गिर्द देख के उससे कुछ सबक ले ले, निशानियां अल्लाह की तो हर तरफ फैली, उससे भी जाहिल रहा, अल्लाह की वही से भी जाहिल रहा, दुनिया में भी गुम रहा। ये वो काफिर और ये वो मुनकर बंदा है जो ना तो खुद माना अल्लाह की बात को, और ना ही दूसरों को मानने दिया। अल्लाह ताला ने नूरे हिदायत तो रखा था, लेकिन इसने अपने नूरे हिदायत को भी, उससे भी महरूम हो गया, इनकार कर करके। ये ऐसे लोग हैं, जुल्मतों पे जुल्मतें हैं, जिहालत इस कदर इंतहा किया कि गलत काम भी करता है, इसको तो नजर ही नहीं आ रहा ना, हक तो नजर ही नहीं आ रहा क्योंकि अंधेरे में है ना, और गलत काम भी कर रहा है, लेकिन उसको कोई एहसास नहीं कि मैं कुछ गलत कर रहा, बल्कि धड़ल्ले से करता है। नूरे फितरत तो वैसे ही खत्म हो गया। अब देख रहे हैं आज की ये जो सोसाइटी है, इसमें अक्सरियत लोगों की ऐसी नहीं है क्या? ला इल्म है, ख्वाहिशात के अंधेरे हैं, ला इल्मी के अंदर हैं, जहालत, कल्चर और माहौल और इंसाफ के अंधेरे हैं। वो अंधेरों के अंदर डूबे, एक अंधेरे से निकले तो दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से ऊपर चौथा, और वो इनमें खुश हैं। वो समझ रहे हैं कि वो बिल्कुल सही है, उनको कोई एहसास भी नहीं है कि गलत कर रहे हैं या गलत भी हैं या कोई जानने की कोशिश ही करें, क्योंकि इतने अंधेरे में है कि एक हाथ दूसरे को नजर तक नहीं आ रहा, इतने अंधेरों में। जो कोई मौके भी हैं हक को पाने के, उनसे भी बहुत दूर है। अल्लाह अकबर, रोशनी उन तक पहुंची ही नहीं। तो अल्लाह ताला ने तो बहुत सारी मौके रखे हैं, अंदर भी फितरत का एक नूर रखा है, फितरत में भी इंसान के हिदायत की तलब रखी, कायनात में भी निशानियां रखी हैं। इसी तरह अल्लाह ताला ने अपना कलाम भी भेजा, अपने अंबिया भेजे, और कहीं से भी ना उन्होंने पाया नूर, इसलिए कि दूर दूर तक वो अंधेरों के अंदर डूब चुके हैं। अल्लाह अकबर। तो देखिए, एक तो समंदर भी गहरा है ना, गहरा, लुज्जी, लुज्जी बहुत कहते हैं बहुत गहराई को, और उसके ऊपर भी मौज पे मौज। तो ये मिसाल है बागियों की, जो ना ताल्लुक अल्लाह से रखना चाहते हैं ना अल्लाह को पहचानना चाहते हैं, वो चाहते हैं कट जाएं। अल्लाह अकबर। और जो अल्लाह से कट के रहता है ना, फिर वो अंधेरों में डूबता ही चला जाता है, फिर कोई एक जगह थोड़ी रुकता है। आप देखें गहराई के अंदर कोई समंदर, ऐसे समंदर में चला जाए तो वो नीचे ही जाता जाएगा ना, ऊपर आने के लिए तो बहुत एफर्ट चाहिए होती है, अंधेरों को चीरने के लिए एफर्ट चाहिए। तो वो जब एक दफा गिर गया ना उसमें, तो अंधेरे पे अंधेरे होते जा रहे हैं, एक जुल्म मौज ना, मिन फौकी मौज, मौज के ऊपर मौज है ना, तो कि वो हत्ता के वहां तक पहुंच गए जहां पे कुछ भी नहीं नजर आ रहा। अल्लाह अकबर। हाथ की बात इसलिए की गई कि हाथ इंसान के सबसे करीब होता है ना, अगर देखना चाहे तो हाथ को भी अपने करीब ला के देख सकता है, लेकिन अगर हाथ भी ना नजर आए तो सोचें फिर। अमन लम या जालिल्लाहु लहु नूरन फमा लहु मिन नूर। और अल्लाह जिसके लिए नूर ना बनाए ना, जिसके लिए नूर ना दे जिसको, उसको कहीं से नूर नहीं पा सकता। जिसको अल्लाह ना हिदायत दे, जिसको अल्लाह ना रोशनी दे, जिसको अल्लाह ताला ना ईमान दे, उसको कोई नूर नहीं मिल सकता। चाहे वो कितनी डिग्रियां ले ले, चाहे वो कितनी जगहों पे पढ़ ले, चाहे वो कितनी कमाइयां कर ले, चाहे वो दुनिया में मिलियनेयर बन जाए, वो नूर नहीं पा सकता, कोई उसको नूर दे नहीं सकता, कोई और नहीं दे सकता। जो अंधेरों के अंदर रहने के आदी हो जाते हैं और इसको ही नूर समझते हैं कि हम बिल्कुल ठीक हैं, हम तो नूर में ही हैं, हम तो बिल्कुल सही कर रहे हैं। और आज देख लें ना, लोग ऐसे ही समझ रहे हैं ना, वैल्यूज जो उलट गई हैं। जो अंधेरा है उसके अंदर से ये भी नहीं घबराहट के मैं अंधेरे से निकल आऊं, अंधेरे को ऊपर ही इकतफा कर लिया, अंधेरे को ही समझ लिया कि बस यही ठीक है। अल्लाह अकबर। अब देख लें कि ये जो सारा हमने बिल्कुल अल्लाह के हुक्मों को तोड़ के अपने और जहन कुछ और बना लिए, ये अंधेरे ही तो है ना, कि बेपर्दगी को हमने सोच लिया ये रोशन ख्याली है, ये मॉडर्निज्म है, ये अप टू डेट होना है, और ये सोच लिया कि हिजाब तो और पर्दा सही, जो पर्दा करना है वो तो अंधेरा है, हालांकि उलट है, सारे सब कुछ ही उलट दिया ना, अंधेरों में रह के और उसको गवारा करना और उसके ऊपर मुतमईन हो जाना, ये है जहालत के अंधेरे कैसे छा गए। अब इनको ना कोई तौफीक मिलती है, क्योंकि ये अब उसमें ही रहना पसंद करते हैं, तलब इनके अंदर नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है अल्लाह से, उसके कलाम से। तो नूर के लिए नूर मांगना भी जरूरी है। अल्लाह ताला जिसको चाहे नूर अता करे, सारी दुनिया भी मिलके चाहे तो किसी को अंधेरों से नहीं निकाल सकती अगर अल्लाह ना देना चाहे तो। इसके लिए मांगना चाहिए, अल्लाहुम्मा जाल फी कल्बी नूरा वफी बसरी नूरा वफी समी नूरा वयमीनी नूरा वयसारी नूरा वफोकी नूरा वताहती नूरा वमामी नूरा वखल्फी नूरा अल्लाहुम्मा आदमली नूरा। तो नूर अल्लाह मुझे चाहिए, मेरे दिल में भी नूर चाहिए, जुबान में भी, मेरे पता के आगे आता है, मेरे बालों में, मेरी जिल्द में, मेरी हर तरफ, मेरे दाएं बाएं ऊपर नीचे, अल्लाह मुझे नूर अता फरमा दे। नूर में होंगे ही तो चल सकेंगे, अंधेरों में तो कोई चल भी नहीं सकता, सिर्फ टकरे ही मारता है ना, तो टकरे ही मारते रहेंगे फिर सारी जिंदगी, और वो यहीं से रुखसत हो जाएंगे, और पता चला अंधेरों में ही जिंदगी गुजार के आ गए तो क्या किया। अल्लाह ताला हमें अंधेरों से नूर में ले आए, अल्लाह ताला इस नूर को हमारे दिल की बहार बना दे, अल्लाह ताला हमें सारी जिंदगी नूर में रहने की तौफीक अता फरमाए। सुभानक अल्लाहुम्मा बिहमदिक नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुक व नतूबु इलैक। तिलावत सुनिए।
الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور.